Market Monster. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can, of course, call us on 2331-4444 and 2342-1050. I'm Gauran Dhawan Lal, and with me is my co-anchor, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी। आज सोमवार है और हम आपकी आर्थिक जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-10-50 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल जी। अमन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरा।
थैंक यू निखिल एंड अमन, वेलकम टू द प्रोग्राम। We begin with a quick look at the headlines. Benchmark indices lose for second consecutive session. Sensex ends at 73,399. Nifty settles at 22,272. In a significant rise at the commodity exchange, gold crosses 72,000 rupees. Silver prices surge to record highs. And oil market shrugs off West Asia tension. Brent crude down by 0.73% at $89.79.
घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में भी गिरावट। सेंसेक्स 73,399 पर आकर बंद हुआ। निफ्टी 22,272 पर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में बढ़त का रुख। सोना 72,000 के पार, चांदी उच्चतम स्तर पर। और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को नजरअंदाज करते हुए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.73% नीचे आकर $89.79 प्रति बैरल। और शेयर बाजार से जुड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशकों के अरुचिपूर्ण रवैये के चलते घरेलू बेंचमार्क सूचकांक को सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1% से अधिक की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 845 अंक यानी 1.14% के नुकसान के साथ 73,399 अंक पर आकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 247 अंक यानी 1.10% की गिरावट के साथ 22,272 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार में बीएसई मेट कैप सूचकांक में 1.15% की सुस्ती आई और स्मॉल कैप सूचकांक 1.54% नीचे आ गया।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज द सेंसेक्स एंड द निफ्टी फेल ओवर 1% एज द ऑनगोइंग टेंशन इन वेस्ट एशिया केप्ट इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट सब्ड्यूड। At close, the BSE Sensex was down 845 points or 1.14% at 73,399 and the Nifty was down 247 points or 1.1% settling at 22,272. From the Sensex basket, Oil and Natural Gas Corporation, Hindalco Industries, Maruti Suzuki India, Nestle India, Britannia Industries and Sun Pharmaceutical Industries stood among the top gainers. On the other hand, Bajaj Finserv, Wipro, UPL Limited, ICICI Bank, Larsen & Toubro, Bajaj Finance, Adani Enterprises, Bharat Petroleum Corporation and Tata Motors closed in the red. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.5% and the small-cap index fell 1.54%. Aman, when we see the stock market today and of course at its closing, which was last Friday, and before that, we'd already been seeing that, you know, the Sensex was really maintaining a higher level for some time. Now, is this a part of its natural, you know, there's a pattern which is setting in, a few days of really good going, and then periodically, selectively in some shares and some sectors, there's a fall, could be a correction, and then it moves up again? Or is it responding to the world situation?
You see, normally people do believe that the markets respond to any kind of a catastrophe or an event happening around the world. But when we look at markets in real sense, and specifically when we talk of Indian markets, we are not an international exchange, and we are not connected like the London Stock Exchange or the New York Stock Exchange or NASDAQ and others, or the Tokyo Stock Exchange. So there is no direct ripple effect which takes place from these countries to here. Certainly sentiments happen, but in my opinion, this is more because the kind of mix of companies which have taken a go up and a go down is more of a corrective measure. And secondly, we did see also in the headlines, as you said, the gold actually has gone up.
Right.
Normally, when we see investments in markets, we see one component goes up, the other component goes down, because generally people would try and take out money from one and invest in other. It's a very rare occurrence where all the three markets, specifically in India, we look at the bullion, the real estate, and the stock markets, go simultaneously up. We've had two or three waves of this in the last 20 years, but it's a very rare occurrence. Usually it's one going up and one going down. So in my opinion, it's more of a correction and reorientation of asset allocation which has taken place by companies. So that is something which I can certainly see. Also, there are at times, budget allocations which need to take place, because the rupee has also gone down slightly if we see today, the closing which took place. In that opinion, there could be some withdrawals which might be taking place when they want to, because many companies in India would like to do budget allocations which take place in the March, but then they start getting implemented going from April till June for most companies. So there also could be some outflows there.
Right. Well, today is a listener-based program. We are delighted to have from Raigarh, Kush. Kush, please ask your question. Welcome to the program.
Ji, good evening, ma'am. Aman ji ko mera namaskar.
Namaskar.
Ji, sir, mera do sawal hai. Pehla sawal ye hai ki crude oil ke price badhne par petroleum jo stock hai usse kya asar padta hai? Aur dusra gold ke price badhne par jo stock market pe kya effect hota hai?
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. पहली बात तो क्रूड ऑयल के प्राइस से स्टॉक्स के ऊपर कोई ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो होती हैं इंटरनेशनल लिंक्ड होती हैं, जिनको अब जो भारतीय मार्केट में जब उतारा जाता है उनके अंदर एक लैग होता है. जब मार्केट में जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से और आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है उसमें करीबन डेढ़ महीने का अंतर होता है, तो वो प्राइसेस इम्पैक्ट जाके डेढ़ महीने में आता है. तो इसलिए स्टॉक का जो इम्पैक्ट होता है वो कंजम्पशन के ऊपर होता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कंपनीज कितना खरीद रही हैं, उससे स्टॉक में वेरिएशन आता है. इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पे स्टॉक में वेरिएशन नहीं आता है हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर. अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे अरब हो गया या अरब के देश हो गए या अमेरिका हो गया, वहां पे इनकी प्राइसेस पे क्योंकि वो बेचते रहते हैं तेल को और खरीदते भी रहते हैं, तो उनके स्टॉक में वेरिएशन आता है. हिंदुस्तान का स्टॉक ज्यादातर कंजम्पशन के लिए यूज होता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है. दूसरा जो आपने पूछा स्टॉक मार्केट के अंदर, देखिए गोल्ड एक इंडिपेंडेंट मार्केट है. ऑल्दो अब एक्सचेंज है, जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पे ट्रेड होता है गोल्ड, उसका फ्यूचर का प्राइस भी किया जाता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन भी की जाती है, बट नॉर्मली जो होता है एक इंडिविजुअल, जो एक इंसान, आप या मेरे जैसा कोई इंसान जो खरीदता है बेचता है स्टॉक को, वो तो जरूर करता है, पर जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसकी वजह से ज्यादातर मूवमेंट्स आती हैं, उनको जो है ज्यादातर वो गोल्ड को खरीदती नहीं है. उनकी खरीदारी जो होती है या तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में, ग्रोथ स्ट्रेटेजी प्लान्स में होती है, या फिर स्टॉक मार्केट्स में होते हैं. तो इसलिए वो एकदम से इम्पैक्ट हमें देखने को गोल्ड प्राइसेस में इसका नहीं मिलेगा. इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा बहुत रहता है इसके अंदर.
अमन, जो भी स्थितियां अभी चल रही हैं, खासतौर पर पश्चिम एशिया के तनाव की हम बात कर रहे हैं, विदेशी निवेशक हमारे यहां पर बहुत ही एक उनकी इम्पोर्टेंस है और नो डाउट उनकी भी नजरें होंगी इस पर. क्या रुख आपको लगता है कि कोई बड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं आगे?
नहीं, मेरे विचार में भारत ने बहुत अच्छा अपने आप को प्रस्तुत किया है पिछले कोरोना काल के बाद से, पहले भी था. करीबन $7.5 बिलियन हर महीने हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मतलब हैवी निवेशक में आता है, पोर्टफोलियो होता है जो स्टॉक मार्केट में आता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई कारखाना बनाना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, कोई कंपनी खरीदनी है, इन चीजों में जाता है जिसको एकदम से निकाला नहीं जा सकता है, तो काफी हद तक आ रहा है. और कोरोना काल के अंदर भी जो है करीबन 6.5 बिलियन डॉलर हर महीने आया, जबकि विश्व के अंदर दुनिया ने लोगों ने पैसा निकाला पर हिंदुस्तान में निवेश करते गए, जबकि लोग देशों के पास कंपनी के पास पैसा नहीं था पर हिंदुस्तान में फिर भी निवेश करते गए। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हिंदुस्तान की छवि से एक सेफ हेवन, एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरीके से है कि अगर यहां पर पैसा लगा रहे हैं तो यहां से हमें इसका कुछ फल भी मिलेगा और हमारा पैसा गायब नहीं होगा। तो इसको देखते हुए मेरे विचार में कोई भी ऐसी भी नीति नहीं आ रही है, कोई चीज हो रही है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की भी, कभी जब वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की मीटिंग भी चल रही है, कल से शुरू होनी है, उसके अलावा जो ईडीबी की रिपोर्ट देखे, मूडीज की रिपोर्ट देखे, सब लोगों ने हमारे जीडीपी फिगर्स को बढ़ाया है, कहा है कि बढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाया पर बढ़ाते हुए दिखाया है। ये एक और पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। एक तरफ भारत सरकार ने कहा बजट के बाद की बढ़ रही है, पर भारत सरकार को जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कह रही थी कि ये तो अपने वोटिंग के लिए कह रहे हैं। बट जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया, वहां पे ऐसे नहीं इन्फ्लुएंस किया जाता है, वहां पे जो है आपको ये बताया जाता है कि जो डेटा आता है उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। और सभी एजेंसीज ने, किसी ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, किसी ने 50 बेसिस पॉइंट, 6.5 से लेके 7.5% की रेट किया गया है 24 के लिए। तो मेरे विचार में ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का, और इससे निवेश जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं घटता नजर नहीं आ रहा है।
दैट मीन्स देर इज अ कंसिस्टेंट बिलीफ इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।
देर इज
राइट। वॉन्टिंग टू डू अ जूम इन ऑफ कोर्स नाउ जस्ट टू गेट अ बेटर सेंस, यू नो दीज दिस न्यूज इज बीन डूइंग द राउंड, द स्टॉक प्राइसेस टू कॉर्पोरेट अर्निंग्स गैप इज क्लाइम्ड टू इट्स हाइएस्ट। नाउ जस्ट डीकंस्ट्रक्ट दिस अ लिटिल फॉर अस, व्हाट डज इट मीन, इज इट अ गुड साइन और व्हाट डज इट मीन?
Usually, you know, stock prices go up and down, as you know, because of people buying and selling. Corporate earnings go up and down because of their real products selling in the market and all. So when stock prices and the real valuation, market valuation, there's a difference in the balance sheets figures in terms of how much they have grown. Let us say they had EBITDA or their profits were there, but then they were not so high, maybe 10%, 15%, 20%, 30%, whereas the stock markets have gone up by 50%, 60%. So the gap is what is being talked about here. This gap is because of the sentiments in that company plus the real functioning. This gap is generally not considered good. But when a company is wanting to sell itself, wanting to do a market valuation, then it is always good, because when you need to pick up money from the market, then your valuations are high, so people perceive that you will be doing well. But this gap should narrow down to as much as possible in real sense, so that the real reflection of stock price should come from the existing working of the company and not because people's sentiments are there for it.
That means they are a little inflated, you feel, the stock market or some stocks are
inflated? You cannot say whether they are inflated or not. People generally would like to technically put it that it is inflated, but it is not inflated, because it is based on your and my perception, and your and my perception goes on multiple factors which are happening. What are available in the market, which one do I feel is more safer than the other. So there can be n number of factors which can decide why I want to go for a A company or B company or C company. Their real product is not known, because no one has that information, neither the time to go and look at every time their EBITDAs or their profit and loss accounts and so on and so forth. And many times they don't even have the knowledge to go about doing that. So it is not. And earlier we had newspapers declaring some of these informations more frequently. Today we have stock exchanges, consultants, companies like Moody's, which give out information. So people base their judgments on them. And that's where we see that, you know, there can be differences between them. It does not mean, again, whether they're inflated or lowly priced. But generally, if the gap is too much, if the trend of the profits are going down, whereas the stock markets are, share prices are going up, then it, for an investor, it is a question to be looked upon. Unko dekhna chahiye ki aisa indirect वेरिएशन ना हो कि एक तरफ लॉसेज हो रहे हैं कंपनी के और दूसरी तरफ उसका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने कुछ कंपनीज में पीछे देखा जिसके ऊपर आरबीआई ने भी रेगुलेशन में कुछ कमी की है, जो पकड़े गए, बैंकिंग में भी देखा गया कि जहां पर एक तरफ लॉसेज हो रहे थे दूसरी तरफ वो शेयर प्राइस उसके बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसा अगर ट्रेंड आता है देन दे मस्ट कीप अ स्टॉप एंड कीप अ वॉच ऑन इट एंड नॉट इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट इफ देर इज अ ट्रेंड विच इज ऑन वन साइड एंड इफ देर इज अ गैप देर इज नो प्रॉब्लम।
और अमन जी, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो छोटे छोटे पैमाने पर निवेश करते हैं, उनको हमारे कार्यक्रम से बहुत मदद मिलती है। अभी जो परिस्थितियां हैं लगातार बदल रही हैं, हालात पर नजर भी रखी जा रही है, लेकिन हमारे जो इस तरह छोटे छोटे निवेशक हैं, श्रोता हो या ना हो, तो उनको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए इस समय में?
देखिए, किसी भी निवेशक के लिए एक बैलेंस अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है। बैलेंस अप्रोच के अंदर कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, किसी भी चीज का ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हमें एक बास्केट बनानी चाहिए एसेट्स की, किस किस में हम करना चाहते हैं, कितना पैसा हमें छोटे समय के लिए चाहिए, कितना पैसा लॉन्ग समय के लिए चाहिए, कितना हमें चाहिए बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी ऐसी दुर्घटना के लिए, तो उन चीजों को देखते हुए हमें निवेश करना चाहिए और ताकि वो पैसा उस समय जब जरूरत हो मिल सके।
और इस बीच कोलकाता से अतनुज शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो,
इवनिंग सर, आई अटेंड फ्रॉम कोलकाता सर। माय क्वेश्चन इज हाउ कमोडिटी मार्केट वर्किंग इन इंडिया एंड इट्स फ्यूचर एंड एक्सचेंजेस, प्लीज एक्सप्लेन समथिंग, थैंक यू।
देखिए, कमोडिटी मार्केट्स हैव बीन देयर फॉर अ गुड 24 इयर्स नाउ, इट्स नॉट समथिंग न्यू। Although, if we really look at the commodities market, even before Bombay Stock Exchange started functioning in 1875, the commodity markets and commodity trade used to be there. That was one of the first. The barter trading is nothing else but commodity trading as well. So, India has been well versed with commodity trading, but in the formal, new, modern style of marketing, we have had the multi-commodity exchange and some of the other exchanges. About 25 exchanges were existing in India in different states, which were actually doing commodity trading even before. At a national level, we saw multi-commodity exchange coming in the formal setup. So, commodities market has been very strong. If you really look at these mandis, where the food products are traded, this is also a form of a commodity market only. So, there are different forms of commodity small scale market which have been existing, and I think the future of commodity markets in India is fairly safe and strong, specifically because there were corrections brought in with the MCX also. Some of the top officials of MCX were questioned and some even put behind bars for some of the irregularities which happened in the exchange and did not impact the functioning of the exchange or the investor who was trading in that. And I think that is something which is very unique with India in particular, where whether exchanges or financial institutions, they don't get impacted. People's money don't get impacted, even if there are stronger strictures taken against some of the officials of that particular exchange or the financial institution.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्र और हमें फोन करने के लिए हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 2331444 2342 1050। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल जी। और हम रुपये पर नजर डालते हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.45 रूपये पर बंद हुआ। वहीं विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 105.91 पर कारोबार कर रहा था। और अब एशियाई और यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। केवल चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.24% की बढ़त देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम इंडेक्स में 1.05% की सुस्ती आई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.74% के नुकसान में रहा। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.73% नीचे आकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.43% की गिरावट आई। वहीं यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार मिलाजुला कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.83% के लाभ में रहा। फ्रांस के कैक में 0.73% का उछाल आया। और अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी 100 में 0.45% का नुकसान देखा गया। इस बीच मुंबई से गोपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गोपाल जी, आपका प्रश्न पूछिए।
जी नमस्कार जी, मार्केट में टीम को
नमस्कार।
मेरे दो सवाल है। पहला तो एक महंगाई के ऊपर है। आप लोग सर ये महंगाई कौन ने ये डिक्लेयर करता है, कुछ आइडिया नहीं है। कभी मेरे को लगता है आरबीआई करके कि और कोई करता है। अगर वो हमेशा बोलते हैं 5 से 6% महंगाई दर है सर, लेकिन खाद्य महंगाई दर फूड इन्फ्लेशन 30% चल रही है। इसमें सारे ये सब्जी अनाज दालें दूध सब ये जो भी रोज काम की चीजें 30% महंगाई दर चल रही है, तो ये 4 से 5-6% कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया पहले ये। और दूसरा सर, ये मार्केट में जो इक्विटी में डायरेक्ट जो इन्वेस्ट किया, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, अगर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ।
बिल्कुल जनाब, पहली चीज जो महंगाई दर की बात की है, इस समय 4.5% जो लास्ट आरबीआई गवर्नर साहब दक्षिणकांत दास ने रिलीज किया उसमें 4.5% की दर की गई है। ये एक लार्ज काफी सारी कमोडिटीज को देख के, सिर्फ खान पदार्थ की चीजों को देख के नहीं होती है। इसमें मेटल भी होता है, लिक्विड्स भी होते हैं, ऑयल भी होता है, गैस भी होती है, बहुत सारी चीजें और होती हैं, लेबर की भी प्राइसेस होती हैं। और अब जो हम करते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसके बेसिस पे देखा जाता है जिसमें कुछ चीजें बढ़ती हैं कुछ चीजें घटती हैं। तो इसलिए मंथली जो एवरेज आता है वो हमें पता चलता है कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज प्लीज आप ये समझिए कि जब हम कहते हैं कि 4.5% बढ़ी है, इसका मतलब जो कोई चीज 100 रूपये की थी वो 4.5% महंगी हो गई है 100 रूपये से, तो हर बार वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो हम ये सोचें कि अगर हम कह भी रहे हैं कि बढ़ रही है, तो जैसे एक इंसान छोटे बच्चे से ग्रो करता है, जब ग्रो कर रहा होता है तो एक एज आता है, टाइम आता है जब बड़ी तेजी से ग्रो करता है तो वो तेजी से ग्रो कर रहा है, फिर एक टाइम आता है जब वो ग्रो करना बंद कर जाता है, उसकी हाइट ग्रो करनी बंद कर जाती है, तब हम कहते हैं वो स्टैग्नेंट हो गया। नेगेटिव कब होता है, एक एज के बाद झुकना शुरू हो जाता है तो उसकी हाइट कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो उस ग्रो के अंदर वो हर बार इन्फ्लेशन हमारा है, तो जब आप कंपेयर करते हैं उसको तो आप कहते हैं पिछले 2 महीने पहले 3 महीने पहले इतना प्राइस था, आज इतना प्राइस है, आप फिर ओवरऑल देखते हैं। वहां पे वो सरकार उसको ओवरऑल नहीं, वो एक पीरियड के ऊपर कैलिब्रेट करके सारे इंडेक्स को क्रिएट करके उस इंडेक्स के अंदर डेटा डाल के, और ये कंज्यूमर प्राइस, पहले होलसेल प्राइस देखते थे जो मंडियां होती थी उनसे पैसे प्राइस लेते थे, अब ये कंज्यूमर को जो प्राइस एंड प्राइस मिल रही है उसके बेसिस पे कैलिब्रेट की जाती है। जो आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, और स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें निवेश करना के लिए 2-3 चीजें हम कहते हैं ध्यान रखनी जरूरी है। पहली चीज, जब भी आप किसी चीज में निवेश करना चाहें तो उसका रेटिंग देखिए कि उस कंपनी की रेटिंग क्या आ रही है, ए आ रही है, ए प्लस आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बी आ रही है। वो एक जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो थोड़ा मापदंड बनाती हैं कि उसके अंदर निवेश करना कितना सेफ है, उससे हमें पता चल पाता है कि कितने टाइम से ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, इसके बोर्ड लोग कैसे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर आपके पास समय हो तो उनके जो रेवेन्यू चार्ट्स हैं वो भी आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, फिजिकल भी मिल जाते हैं, कभी कभी कंपनीज की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, उनको देखिए। इसी तरीके से कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स होती हैं उनके चेयरमैन की रिपोर्ट होती है उनको भी पढ़िए, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद लास्टली आप जो है अपने आप को डिसाइड करना जरूरी है कि मेरे को किस सेक्टर में जाना है, सिर्फ ये कि हम ए बी सी देख के कर लें, और साथ में हम कितना निवेश करना चाहते हैं वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत हैवी होते हैं तो उसमें कमी आप शेयर खरीद सकते हैं, कई बार जो छोटी कंपनीज होते हैं उनके शेयर प्राइसेस कम होते हैं तो उसमें ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। तो आप कितना निवेश करना चाहते हैं और किसके ऊपर आप स्थिर रहना चाहते हैं उसको देखना जरूरी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें। और हिन्दुस्तान में इस समय इन्फ्लेशन बहुत कम है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को देखते हुए हिन्दुस्तान का बहुत स्टेबल रहा है, इसीलिए आरबीआई भी पिछले 2-3 अनाउंसमेंट से कोई चेंजेस नहीं कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन है जितनी नियंत्रण सीमा होनी चाहिए उसके आसपास ही घूम रहा है और कंट्रोल फैशन में चल रहा है। आरबीआई इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, डायरेक्टली वो भी कंट्रोल इसको नहीं कर सकती है।
वी मूव ऑन टू जयपुर नाउ फ्रॉम वेयर वी हैव जितेंद्र। जितेंद्र प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो जितेंद्र, I think the call seems to have dropped. Jitendra, please try again and we are ready to receive your question. Meanwhile, Aman, moving on to our next story for the day. India and Mauritius closed another lacuna in their double taxation avoidance agreement, DTAA, tightening the scrutiny on tax avoidance on investments coming into India. The new protocol on DTAA was signed on the 7th of March this year. The latest amendment includes a principal purpose test, PPT, to decide whether a foreign investor is actually eligible for treaty benefits or was the tax benefit the primary reason to route investments via Mauritius. DTAA is a bilateral agreement aimed at preventing double taxation of income earned in one country by residents of the other country, India and Mauritius in this case. Aman, your a little elaboration and to put it in layperson and simple terms, please.
देखिए, the double taxation treaty is basically to give benefit to individuals as well as to companies to not pay taxation at two countries' port for the same product being produced or services being produced by that country. Now, many companies take advantage of this facility in terms of paying lower taxes by getting themselves taxed in a country where for certain commodities they may be lower, the other commodities they may be higher. There is nothing wrong in this. This is called also tax planning. So if you're doing tax planning, is okay. But many companies try and only reroute their funds showing that they have operations in that country, whereas they have no operations in that country, and they only use it as a consolidation factor and put their offices there. मतलब कि वहां पे सिर्फ अपना एक ऑफिस बना रखा है जिसपे वो जाके बिलिंग इन्वॉइसिंग वगैरह करते हैं ताकि जो है वो टैक्स बेनिफिट या टैक्स जो फ्रेमवर्क बेनिफिट मिल रहा है वो ले सके, पर वहां पे ना कोई ऑपरेशन है ना कोई काम है और उस पैसे को रीरूट करते हैं. कभी कभी वो ये बताना भी नहीं चाहते कि पैसा कहां से निवेश हो रहा है. उसकी वजह से काफी सारे जो दिक्कतें आती हैं देशों को, टेररिस्टिक थ्रेट्स आते हैं और थ्रेट्स आते हैं, तो इस वजह से जो है वो सरकारें चाहती हैं कि उसे कंट्रोल किया जाए. ज्यादातर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंट्री से, जैसे हम देखते हैं जर्मनी से आती है, लग्जमबर्ग से आती है, पर कुछ टैक्स हेवन्स हैं जैसे सिंगापुर हो गया टैक्स हेवन, आपका मॉरिशियस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, यहां पे कुछ हिडन हो जाती है इन्फॉर्मेशन. और इसको देखते हुए भारत सरकार ने अब दोबारा टैक्स ट्री की एनहेंसमेंट किया है मॉरिशियस, पिछले साल भी की थी, इस साल एनहेंस की है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले कि टैक्स डबल टैक्सेशन टैक्स प्लानिंग के तहत किया जा रहा है या टैक्स को चुराने के तहत किया जा रहा है.
ये इंडिया में जो एफपीआई इनफ्लो होगा उसे किस तरह से प्रभावित करेगा, कैसे उस पर असर डालेगा?
नहीं, मेरे विचार में जो फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो हो रहा है हिंदुस्तान में वो अलग अलग देशों से हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है. देखिए मॉरिशस इस समय चौथा नंबर देश है जो इनका फ्लो आ रहा है, बट उससे हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए क्योंकि लोग जो है उसमें वहां पे इन्वेस्ट जो रीरूट कर रहे थे वो बचने की कोशिश करेंगे. बट अभी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कोई भी रूटिंग एकदम से ऐसे डिसीजन से नहीं आती है, इनको इम्प्लीमेंट करने में भी समय लगता है. और इसलिए भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया है मेरे विचार में भारत के हित में है, भारतवासियों के हित में है और अल्टीमेटली जाके हमें बेनिफिट करेगा लॉन्ग रन के अंदर. शॉर्ट रन में हो सकता है मॉरिशस से फॉलो, बट जो इन्वेस्ट हिंदुस्तान में करना चाहता है, जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो डायरेक्ट भी आने को तैयार है.
राइट, ओके. लुक एट द ऑयल प्राइसेस. ऑयल प्राइसेस स्लिप टुडे एज ट्रेडर्स थिंक इजराइल इज लाइकली टू रिएक्ट कॉशियसली ऑन ईरान्स अटैक, reducing the risk of a broader conflict in the West Asia. Brent crude oil was 0.73% lower at $89.79, whereas West Texas Intermediate fell 0.82% under $85 when reports last came in. Aman, quickly, your understanding of, you know, what's happening between Israel and Iran, and of course, how is that going to impact prices? Because the market trends are actually, I mean, it takes 2-3 days for them to actually follow the global trend.
I agree. You know, fortunately for India, we have moved away dependence from the Arabic region to large part of the world. So not only that we have started producing more oil, but also the fact that we are now buying oil from Asia, we are buying from Europe, we are buying from United States. So we have actually diversified our portfolio. Jo hum jahan jahan se oil lete the, pehle kareeban 70% Arabic zone se aata tha, Iran se aata tha, inme se jada tha. To wo humne kam kar diya hai dependence. So is wajah se ekdam se Hindustan ko impact karna कम करेगा. पर जहां से हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें, जहां पे ऑयल ट्रेडिंग होती है, उसकी प्राइसिंग की जाती है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसराइल की जो ये लड़ाई चल रही है पैलेस्टाइन के साथ और जो अभी बॉम्बिंग भी हो रहा है, कल परसों भी हुआ, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा. पर फर्क इसलिए इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑयल रिजर्व्स कम नहीं हो रहे. पहले हमने कुछ देखे हैं, कभी कभी जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं, वो जलने शुरू हो गए हैं, तो ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम आई है. अभी जो डिस्टर्बेंसेज आएंगी वो डिलीवरी के अंदर डिस्टर्बेंसेज आएंगी, तो इसलिए वो मेरे विचार में इतना ज्यादा हिंदुस्तान को इम्पैक्ट नहीं कर
रहा है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस कीमती धातु का मूल्य 223 रुपए की तेजी से 72,066 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. मई अनुबंध के लिए चांदी 926 रुपए के उछाल के साथ 83,739 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान सोना $2,375.60 प्रति औंस के स्तर पर रहा. वहीं चांदी $28.70 प्रति औंस के स्तर पर रही. अमन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वॉशिंगटन में जो बैठक होनी है बुधवार को, इससे क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
नहीं, मेरे विचार में ये हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग रहती है. स्प्रिंग मीटिंग जो होती है इनकी शुरू से रही है. इसमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में संगठन होते हैं. और मेरे विचार में जैसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी रही है या क्लाइमेट चेंज रहा है या फिर जो इस समय देश सफर कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से कर रहे हैं, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है मनी सप्लाई की वजह से जो किया गया कोरोना टाइम में, हिन्दुस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए लोग बड़े उतावले हैं और उससे वो सीखना चाहते हैं.
Right. We just like to say thank you, Aman. Thank you very much for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices lose for the second consecutive session. Sensex ends at 73,399. Nifty settles at 22,272. In a significant rise at the commodity exchange, gold crosses 72,000 rupees. Silver prices surge to record highs. And oil market shrugs off West Asia tension. Brent crude down by 0.73% at $89.79. And that's all for today's program. Namaskar.
Namaskar.
Marcus.